आज हम बात करने वाले हैं तीन लघु कथाएं पर। तो क्या है ये पाठ, किन किन कथाओं की हम यहाँ बात करेंगे?
यहाँ सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर
जी,
उसमें एक उपन्यास रखा गया है विराटा की पद्मिनी, और काफी वो बड़ा उपन्यास है 150 पेज का। और अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं तीन लघु कथाएं, ये सबसे छोटी विधा है। तो जानबूझकर ये रखा गया है कि इसमें दूसरी भाषाओं में जो लोग लिख रहे हैं हिंदी के अलावा
जी जी,
वहाँ लघु कथाएं किस तरह की हैं, वहाँ की संवेदना कैसी है, उससे भी हमारे शिक्षार्थी परिचित हों। तो तीन लघु कथाएं में अलग अलग छोटी छोटी लघु कथाएं हैं, जिनमें से पहली लघु कथा तमिल भाषी सुब्रमण्यम भारती की है, कवि और लोहार के नाम से
जी।
दूसरी लघु कथा का शीर्षक है क्या नहीं कर सकता, यह एक मणिपुरी लघु कथा है जिसके लेखक हैं इबोहल सिंह कांगजम, और तीसरी है बांग्ला लेखक बनफूल की लिखी सड़क का आदमी लघु कथा
जी।
तो इन तीनों पे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लघु कथा बहुत छोटी होती है, दो तीन अनुच्छेदों में होती है, लेकिन उसका संदेश कितना बड़ा होता है।
और हिंदी के अलावा जो अन्य क्षेत्र भाषाओं में ये चल रहे हैं काम, वो कितने कारगर हैं अपनी भाषा को या अपने संदेश को साधारण जनता तक पहुंचाने में?
हाँ, और उनकी संवेदना भी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि एक प्रकृति होती है। जैसे मान लीजिए मणिपुरी कोई लेखक लिख रहा है तो वहाँ का परिवेश, वातावरण, सब कुछ अलग होता है।
बिल्कुल।
तो कहते हैं ना, देखने का नजरिया, वो भी अंतर होता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि अलग जो भाषा भाषी हैं वो किस तरह से चीजों को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं
जी।
सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लघु कथा बहुत ही प्रचलित विधा है, क्योंकि आज व्यक्ति के पास सामने समय का संकट है।
जी हाँ, बिल्कुल। नॉवल और जो उपन्यास होते हैं उन्हें पढ़ने में लोग कम रुचि रखते हैं, क्योंकि लघु कथा में ये होता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप उसमें एक या दो या चार लघु कथा पढ़ के भी खुद को कुछ सीखने को भी मिलता है, और साथ ही साथ अगर आप मनोरंजन का साधन इसे समझते हैं तो उसमें भी आप कामयाब होते हैं।
तो शिक्षा और मनोरंजन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति होती है,
बिल्कुल,
और कम समय में
जी।
दूसरा यह है कि इसमें जो कहने का ढंग है वो बड़ा रोचक होता है। आपको लगेगा कि सामने बैठकर कोई बातचीत कर रहा
जी।
है। और तीसरी बात होती है कि इसमें कुछ मूल्यों की स्थापना की जाती है, अनावश्यक नहीं होता
जी।
कि जैसे सड़क चलते हम किसी भी घटना का वर्णन कर दें, लघु कथा की श्रेणी में नहीं आएगा
जी।
उसका साहित्यिक रूप भी होना चाहिए,
कोई ना कोई संदेश जनसाधारण को मिलना चाहिए उसके जरिए।
तो इस परिप्रेक्ष्य में ही शिक्षार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि लघु कथा को समझें वो
जी।
तो पहली जो लघु कथा है कवि और लोहार, इसमें एक बड़ा छोटा घटनाक्रम है कि यूरोप का एक प्रसिद्ध कवि लोहार की दुकान से निकल रहे हैं और उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है गाते हुए। तो जब रुककर वो सुनते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी कविता को गा रहा है लोहार।
अच्छा।
लेकिन वो गा रहा है तो शब्दों को तोड़ मरोड़ दे रहा है, है ना, पढ़ा लिखा नहीं है वो
जी,
तो
जी,
शब्द
हाँ,
वो बदल देता है अपने अनुसार। इससे काफी नाराज होते हैं, चूंकि कवि है जिन्होंने एक एक शब्द गढ़कर लिखा है और कोई शब्दों को तोड़ दे तो अर्थ बदल जाता है। तो वे लोहार की दुकान में जाते हैं और जितने औजार थे उसको तितर बितर कर देते हैं। तो वो पूछता है कि आप पागल हो गए हैं, मेरे सामान को क्यों फेंक रहे हैं इधर उधर। तो कवि ने कहा कि सामान तो तुम्हारी दुकान में ही है ना, मैंने इधर उधर केवल किया है।
तुमने तो मेरे कविता के शब्दों को।
वो जब नाराज हुआ तो इन्होंने बताया कि जो तुम कविता गा रहे हो वो मेरी कविता है और तुमने शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया है। तो लोहार संदेश समझ जाता है
जी।
और वो बहुत संकोच करता है। तो आप देखिए कि कितनी छोटी घटना है, लेकिन इस छोटी घटना में कितनी बड़ी बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में हो, चाहे वह लोहार हो या कवि हो, सभी को अपना कार्य पसंद होता है ना। वो कहता है कि मेरी रोजी रोटी है, आप रोजी रोटी में सारा औजार फेंक रहे हो तो वो कहते हैं कि शब्द भी
मेरी
हाँ मेरी संपत्ति है। तो यहाँ जिसका जो जिसकी जो संपत्ति होती है उसको विनष्ट नहीं होने देता, तो कभी अपने शब्द को नहीं और जो लोहार है अपने औजार को नहीं। तो ये एक संदेश है कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आपका जो कार्य है वो महत्वपूर्ण होता है, और दूसरा उसमें हस्तक्षेप न करे, आपकी ये भी अपेक्षा होती है ना। क्योंकि एक कहावत भी है कि जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी, है ना। तो जो सुई का काम करने वाला है, दर्जी है, उसका सौंदर्य उसी के काम में है, है ना। और जो युद्ध करने वाले हैं तो तलवार चलाएंगे वो। तो देखिए कितनी छोटी घटना से कितनी बड़ी बात को रचनाकार कहता है।
बिल्कुल ठीक है कि जिसका काम होता है वो उसी उसको उसका हाँ, महत्व भी पता होता है और उस पर ही वो अच्छा भी लगता है।
हाँ, क्योंकि दूसरे उसको सम्मान दे ऐसा वो चाहता
ऐसा
है,
वो चाहता है
ना।
बिल्कुल ठीक।
तो देखिए कि दूसरी भाषा का है लेकिन जो संवेदना है किस तरह की है वो सार्वभौमिक है, तमिल भाषी भले ही
हो। बिल्कुल सही बात है कि ये संवेदना जो है इसका प्रचलन तो उत्तर भारत में भी है। जैसे एक साधारण सी बात हम अक्सर तक जिक्र कर देते हैं किसी भी उससे जुड़ी हुई कि खाना बनाने के सामने आप खाने की बुराई करेंगे तो उसका दिल बहुत दुखता है, और ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान, व्यक्तित्व की पहचान होती है कि चाहे आप खाना घर में खा रहे हैं या बाहर खा रहे हैं, बनाने वाले का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उसे ईश्वर का वरदान समझ के चुपचाप खा लेना चाहिए। क्योंकि वही बात है
उसी को
कि जिसने मेहनत की होती है उसके काम के साथ कोई छेड़खानी करता है या उसकी बुराई करता है तो उसे बुरा लगता है।
कवि और लोहार तो एक माध्यम है
जी, माध्यम है
लेकिन
संदेश तो वही जो लघु कथा की परंपरा है उसको बरकरार रखा गया है,
लेकिन लागू सब पे होता है ना। दूसरी लघु कथा है क्या नहीं कर सकता। इसमें बादल और हवा के बीच संदेश वो संवाद होता है। तो बादल से हवा कहती है कि आप गरज रहे हो, बरस क्यों नहीं रहे हो, शांत क्यों हो। तो बादल कहता है कि बरसूं या ना बरसूं इसमें दुविधा है मुझे
जी।
वो पूछता हवा का प्रश्न है कि नहीं तुम्हें ये दुविधा क्यों है, मौसम तो तुम्हारा है, है ना। तो तुम अगर चाहते हो कि मैं सहायता करूं तो सहायता के लिए भी तैयार है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सोच रहा हूं कि न बरसूं तो सूखा पड़ जाएगा, है ना, और सूखे के नाम पे पैसे बटोरने वाले आ जाएंगे, और अगर बरसूं तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ के नाम पर पैसे वसूलेंगे लोग, तो दोनों में दिक्कत है।
ये वही सार्वभौमिक सच समाज की अच्छाई जो जिससे समाज को नुकसान ना हो, सामाजिक दायित्व पर बात हो रही है। बादल उसके प्रति जिम्मेदार हो रहा है कि समाज के प्रति भी तो मेरी कोई भावना है, माना ये मेरा काम है, कम बरसूं तो सूखा हो जाएगा, नहीं बरसूं
और दोनों का लोग फायदा उठाएंगे,
दोनों का लोग फायदा उठाएंगे, यानी कि जो
भ्रष्टाचार
वर्तमान भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे बादल भी उसकी जानकारी रखता है।
तो यहाँ हवा का मशविरा है कि सही मात्रा में बरसो, न ज्यादा न कम। तो फिर बादल कहता है कि वह कैसे, अगर थोड़ा सा भी बरसूंगा तो लोग यूं ही नकली बाढ़ का वो प्रचार कर देंगे और आमदनी तो उससे भी कर लेंगे।
बिल्कुल सही, जैसे कि दिल्ली में हर साल होता है, आलू टमाटर प्याज महंगे हो जाते हैं, ये कहकर कि बाढ़ आने वाली है उसे एक महीने के लिए, तो और बाढ़ कभी आए हुए जमाना हो गया।
तो उसके बाद हवा जो है निरुत्तर हो जाती है। तो आप देखिए कि दो के संवाद के माध्यम से,
सही बात है,
है ना,
कि वो भ्रष्टाचार को पर पॉइंट आउट किया गया है, कमेंट्स किए गए हैं छोटी सी लघु कथा के माध्यम से।
यहाँ अगर शीर्षक देखें हम क्या नहीं कर सकता, तो इसमें केवल अगर आप आदमी लगा दें आगे में कि आदमी क्या नहीं कर सकता, तो अर्थ भी खुल जाएगा, है ना। तो भ्रष्टाचार को बताना आप अगर सीधे सीधे कहते हैं तो शायद उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन एक घटनाक्रम को बना के और बादल और हवा के बीच संवाद के माध्यम से तो रुचिकर भी लगता है और प्रश्नोत्तर में ये भी मालूम हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है,
क्या है, बिल्कुल,
है ना। किसी भी स्थिति में जो भ्रष्टाचारी हैं वे फायदा उठा लेते हैं, नकली कागज बना लेते हैं या फिर जो है कहानी बना लेते हैं, है ना, कि ये हुआ वो हुआ, मतलब किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार पे तीखा व्यंग्य है। तीसरी लघु कथा है सड़क का आदमी, और इसमें भी एक घटनाक्रम दिया गया है कि जेठ की दोपहरी में एक राघव सरकार नाम के व्यक्ति हैं, वे बड़े दृढ़ संकल्प वाले हैं, पगडंडी पे ही चलते हैं, पुराने जूते पहनते हैं और मतलब जितने भी अच्छे गुण हैं उससे संपन्न है वो। तो वे किसी रास्ते पे जा रहे थे तो एक रिक्शे वाला कहता है कि बाबूजी आप बैठ जाइए, मैं आगे छोड़ देता हूँ आपको। तो उनका आदर्श था कि रिक्शे पे बैठना पाप है, तो इसलिए वे रिक्शे पे नहीं बैठते हैं, लेकिन रिक्शे वाले को कहते हैं कि आप मेरे साथ साथ चलो। तो आगे जाके गंतव्य तक पहुंचते हैं वो, तो रिक्शे वाले को पैसे देने लगते हैं, तो रिक्शा वाला जो है मना कर देता है और वो कहता है कि मैं भीख नहीं लेता, आप रिक्शे पे नहीं बैठे तो उसके फिर पैसे क्यों लूंगा मैं। तो यहाँ देखिए कि इस तरह से
एक छोटे से मामूली से रिक्शे वाले में भी स्वाभिमान कितना ज्यादा था।
एक तरफ तो दिखाया कि राघव सरकार बहुत ही आदर्शवादी हैं और सारे सर्वगुण संपन्न हैं,
बिल्कुल,
और ये भी उनकी भावना अच्छी थी कि रिक्शे वाले को जरूरतमंद है उसको सहयोग भी करें, पैसा भी वो, लेकिन दूसरा पक्ष देखिए रिक्शा वाला भी उतना ही अभिमानी, है ना,
स्वाभिमानी
कि आखिर
जब आप बैठे ही नहीं रिक्शे में तो कैसे लेंगे।
तो यहाँ भी देखिए कि आप एक संदेश है कि दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय को कम नहीं समझना चाहिए, आप ये समझ रहे हैं कि
और
नहीं,
स्वाभिमान जो है वो किसी एक की धरोहर नहीं होता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की धरोहर नहीं होता, वो किसी साधारण व्यक्ति में, किसी साधारण से भी जो गैर मामूली व्यक्ति होता है उसमें भी हो सकता है उतना ही।
और अगर व्यवसाय से छोटा भी व्यक्ति है तो उसके संस्कार कितने भी ऊंचे हो सकते हैं, उसके संकल्प ऊंचे हो सकते हैं, उसका सम्मान ऊंचा हो सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल सही।
तो ये देखिए कि इतनी छोटी घटना में और रचनाकार कहाँ तक पहुंच जाता है, है ना,
बिल्कुल ठीक।
क्योंकि अगर आप स्वाभिमान पे अगर लेख लिखें 10 पेज का तब भी शायद ये संदेश मिलेगा कि नहीं, मालूम नहीं
जी,
है ना, लेकिन ये चित्र बन जाता है मस्तिष्क पे हमारे
कहानी के जरिए।
हाँ,
कोई बात अगर हमें समझाई जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा संदेश हमारे, मतलब जल्दी हम उस बात को कैच करते हैं।
हाँ, और दूसरा ये भी है कि जैसे इसको साहित्य में कहते हैं कि व्यंजना का मतलब कि आप कह तो कुछ रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन अर्थ कुछ और आ रहा है।
और मुझे लगता है सर कि भारतीय साहित्य की अगर बात करें तो हमारे साहित्य की जब से शुरुआत हुई है, हम अगर सतयुग से उस बात को माने तो तब से लेकर अब तक जितनी भी चीजें हमें सिखाई गई हैं अच्छा मानव बनने की, वो सभी किसी न किसी कहानी के माध्यम से सिखाई गई हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। जैसे अगर हम रामायण को कहें तो रामायण क्या है, वो भी एक कथा है, वो संपूर्ण जीवन को में आदमी ने किसी मानव ने किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, गुरु ने किस तरह करना चाहिए, स्त्री ने किस तरह करना चाहिए, वो संदेश है। महाभारत को देखिए, महाभारत में भी चाहे बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, कहा जाता है कि कलयुग का जो दृश्य है वो महाभारत में दिखाया गया था और आज वही सब हो रहा है जो उसमें हुआ था, लेकिन वो भी एक कथा ही है जिसके माध्यम से हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें ये संदेश दिया एक अच्छा मानव बनने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके इस उद्देश्य से। तो ये जो है कथाओं का प्रचलन, ये तो बहुत पुराने से चला आ रहा है हमारी परंपरा में।
ऐसे भी कहते हैं ना कि सबसे रुचिकर माध्यम है,
सबसे रुचिकर है सबसे, हाँ,
क्योंकि दादी नानी बचपन से कथा के माध्यम से ही सिखाते थे।
बिल्कुल ठीक बात
है ना। और आज भी जब एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें उसका थोड़ा सा रूप बदल गया, कॉमिक्स आ गया और वीडियो आधारित
वीडियो आ गए हैं अब और आगे बढ़ चुके हैं,
लेकिन जो माध्यम है वो कथा ही है, विधा जो है
हाँ। और अब प्रमोट होके फिल्म्स बनने लगी हैं, अब प्रमोट हो गए, अब क्या, बल्कि बहुत पहले से। तो वही है कि जो बहुत बड़ा मैसेज भी अगर किसी 2.5 घंटे की या 2 घंटे की फिल्म के जरिए हम तक पहुंचता है वो हमारे जहन में बहुत गहरी छाप छोड़ता है, या अगर हम कहानी को एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाए उसकी छाप बहुत गहरी होती है। जबकि वही बातें हम साधारण भाषा में किसी को कन्वे करते हैं तो उनका महत्व उतना नहीं रह जाता।
इसको हम लोग कहते हैं बिंब विधान, जब हम पढ़ रहे हैं
हाँ,
तो एक चित्र खड़ा होता है हो हमारे है, सामने जी, जी। और वो चित्र हमेशा याद रहता है। जब भी कभी चर्चा होती है तो शिक्षार्थियों के लिए इसीलिए रखा गया ये कि जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो कम शब्दों में कैसे हम कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस विधा को वे खुद प्रयास करें, लिखने की कोशिश करें, और हमारे जीवन में हर समय नई नई घटनाएं दिखाई देती हैं जिसमें कि हम उतना गौर नहीं करते जितना करना चाहिए है ना।
और जो लोग गौर करते हैं वो कहानीकार या कवि बन जाते हैं। तो वही है कि वो कवि के दृष्टिकोण से वो दृष्टिकोण ही अलग होता है, और जब कोई बहुत ज्यादा भावना के साथ किसी मामूली घटना को देखता है और उसको शब्दों में उकेरने का जज्बा रखता है या कला रखता है, शायद वही कहानीकार या कलाकार या कवि बनता है।
और एक लक्ष्य और भी है हमारा साहित्य पढ़ाने का कि रचनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी को डेवलप करना,
भाषा ज्ञान बढ़ता है पढ़ने वालों का भी, लिखने वालों का तो ऑफ कोर्स की बढ़ता है, उनमें ऑलरेडी भी होता है, लेकिन जो पढ़ते हैं जितने लोगों ने पढ़ा उनका भाषा विकास हुआ।
इसीलिए ये छोटी विधा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षार्थी सोचते हैं कि हम बड़ा लिख नहीं सकते तो क्या करें, कहानी नहीं लिख सकते है ना, नाटक नहीं लिख सकते, तो इस विधा से वे शुरुआत कर सकते हैं और अपने आसपास की घटनाओं से इस विधा को वो जीवित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ज्यादा लघु कथाएं विद्यार्थी पढ़ना चाहें तो इस लघु कथा को हमने डॉक्टर बलराम द्वारा संपादित विश्व लघु कथा कोष के दूसरे खंड से लिया है और वो 8 खंडों में प्रकाशित है। तो जो शौक रखते हैं विद्यार्थी ज्यादा पढ़ना
जी,
उन्हें जाके देखना चाहिए, जिसमें विश्व की जितनी सुप्रसिद्ध भाषाएं हैं उनकी लोक कथाएं उसमें शामिल हैं।
मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि आप जो लेखक हैं
डॉक्टर बलराम की पुस्तक है
जी,
उनके द्वारा संपादित विश्व लघु कथा कोष,
विश्व लघु कथा कोष डॉक्टर बलराम।
तो मैं चाहूंगा कि बहुत से विद्यार्थी रुचि रखते होंगे तो उसको जाकर जरूर देखें। और पत्र पत्रिकाओं में हर जगह लघु कथाएं आती हैं, उसको वो पढ़ें, उससे भी एक शैली का पता लगेगा कि किस तरह से लिखना चाहिए। इसके अलावा दूसरी भाषाओं में क्या काम हो रहा है ये भी एक रुचि का विषय है। अगर कोई हिंदी भाषी है और बंगला साहित्य को पढ़ता है, टैगोर को पढ़ता है, तो अलग संवेदना उसको नजर आएगी,
नजर आती है। बाकी जो अगर हम नाटकों की बात करें, खासतौर से उन सीरियल्स की जो हमें दूरदर्शन पे देखने को मिलते थे, उनमें जब बांग्ला साहित्य की के जिक्र आते हैं की बातें होती हैं, या उस तरह के कुछ सीरियल्स भी हमें देखने को मिले जिसमें बांग्ला साहित्य को उकेरा गया था, कुछ फिल्म्स भी ऐसी आई हैं, तो वहां का जो की जो पृष्ठभूमि है वो अलग तरह की है। संगीत फिल्मों की अगर बात करें तो वहां का संगीत भी बहुत अलग होता है, जिसमें बांग्ला पृष्ठभूमि को दिखाया जाता है, उन फिल्मों का संगीत भी कुछ हटकर होता है, वेशभूषा तो अलग होती ही है।
इसीलिए हमने सुखी राजकुमार एक कहानी हमने 10वीं लेवल पे रखी है, वो जो है अंग्रेजी की कहानी है। तो रखने का उद्देश्य ये था कि अलग अलग भावभूमि के रचनाकारों से परिचित हों। तो मुझे लगता है कि इस पाठ को बार बार पढ़ें वे, और इन लघु कथाओं से जो प्रश्न आएंगे वे मुख्य रूप से इसके कथानक पर और इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में आएंगे। आपको संदेश क्या मिलता है, उस तरह का प्रश्न ज्यादा आएगा। उसके अलावा अर्थ स्पष्ट करना या मुहावरे का प्रयोग, इसका भी विद्यार्थियों को अभ्यास करना चाहिए। व्याकरण का भी अभ्यास करना चाहिए, जिसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया है, पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया है। तो शिक्षार्थी इन चीजों का भी ध्यान रखें।
सर, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने, बहुत ही अच्छे शब्दों में तीनों कथाएं आपने हमें सुनाई। बेशक लघु कथाएं थी, लेकिन वही कि संदेश बहुत बड़ा तीनों के जरिए दिया गया। और इस तरह से हमें ये भी पता चला कि सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों में किस तरह से हिंदी भाषा पर काम हो रहा है।